स्वयं हुआ मनु के पांच बच्चे थे, देहूति, आकुति, प्रसूति, उत्तानपाद, प्रियव्रता। तो तीन पुत्रियां एवं दो पुत्र। सबको मालूम है देहूति का विवाह स्वयंभुव मनु ने कर्दम ऋषि से किया, भगवान कपिल पैदा हुए इस तरह। और प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ, और इसके अलावा उत्तानपाद को सिंहासन में बैठने के लिए कहा गया, क्योंकि प्रियव्रत ने, वो बड़े भाई थे लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मुझे सिंहासन वगैरह नहीं चाहिए। राजपाट सब त्याग के, सब छोड़ के उन्होंने भगवान के चरणों में ध्यान लगाने के लिए अग्रसर हुए। तो इस तरह पिछले चौथे स्कंद में ध्रुव महाराज, दक्षा, प्रथु, पुरंजन, ये सब कथाएं आई। अब पांचवें में, क्योंकि उत्तानपाद चले गए, ध्रुव महाराज चले गए, तो युवा के कौन बैठेगा सिंहासन पर? तो स्वयंभुव मनु ने अपने पुत्र प्रियव्रत को दोबारा अप्रोच किया, दोबारा उनके पास गए, बोले बेटा अब कोई बचा नहीं तो तुम राज पे बैठो। तो उन्होंने एकदम से अपना झुकान, अपना इंक्लिनेशन, अपनी इच्छा नहीं प्रकट की। फिर ब्रह्मा जी आए, जो उनके ग्रैंडफादर, बाबा जी आए, दादाजी आए, उन्होंने समझाया कि बेटा ये इसको तुम राज्य को संभालने को भक्ति से अलग मत मानो, ये भी भक्ति का ही पाथ है। तो उन्होंने फिर उस आदेश को स्वीकार किया, उस सिंहासन पे बैठे। और ऐसा लगा एक समय पे कि जैसे वो सिंहासन में, राजपाट में, रानियों में, ऐशो आराम में व्यस्त हो गए और उनको वो सब अच्छा लगने लगा है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो भगवान के शुद्ध भक्त थे और उन्होंने तुरंत ही सब कुछ त्याग कर बहुत कम समय में वापस अपने आप को भगवत ध्यान में लगा के वो भगवत धाम को प्राप्त हुए। तो महाराज प्रियव्रत का वर्णन स्कंद पांच के पहले अध्याय में हुआ, किस तरह से उन्होंने इस सिंहासन को ग्रहण करने के लिए स्वीकार किया। उसके बाद दूसरे अध्याय में उनके पुत्र अग्निधरा के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में आया। तीसरे में नाभि महाराज के बारे में आया। चौथे स्कंद में ऋषभदेव, नाभि महाराज के पुत्र पैदा हुए। और पांचवें में ऋषभदेव ने जो अपनी शिक्षाएं थी वो अपने 100 पुत्रों को दी, और 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र भरत महाराज थे। और भरत महाराज को उन्होंने कहा कि बेटा ये अच्छा नहीं लगता, ये अच्छी बात नहीं है कि आप यह जीव में मनुष्य रूप को, योनि को प्राप्त करने के पश्चात हम लोग, आप लोग अगर फिर भी इन सब सांसारिक चीजों में लगे रहते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्य मेदत पशु भी नाराणाम धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मेण ही ना पशु समाना। इन चार चीजों में जो कि जानवरों में और हमारे में सामान्य है, कॉमन है, वो भी करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम, हम भी, तो अगर इसी तरह मनुष्य की योनि में ये अच्छी बात नहीं है। और बहुत कई बार लोगों ने प्रभुपाद जी को कहा कि प्रभुपाद जी आप बहुत बार बार कैट्स एंड डॉग सोसाइटी कहते रहते हैं, बहुत बुरा लगता है, इतना हर्ष, इतना सख्त आपको नहीं बोलना चाहिए। अब यहाँ ऋषभ देवी कह रहे हैं हमने 100 पुत्रों को, विट भुजांग नायम देहो देहो भाजान निलोके कष्टान कामान अरहति विट भुजांग ये तपो दिव्यम पुत्र का जेन सत्वम शुद्ध्यादि अस्मात ब्रह्म सौख्य तरंदम। मेरे पुत्रों ये देह तुम्हें मिली है और तुमने क्या किया, कष्टान कामान अरहति, बहुत कष्ट उठा के रात दिन काम करके 4 पैसे लाके अपनी इच्छाओं को पूरी करने में लगा दिया। कैसे लगा दिया, किसकी तरह लगा दिया, लाइक विट भुजांग, विट मतलब स्टूल, लैट्रिन, और भोजांग मतलब खाने वाले ने कि सुअर, कितना सख्त। ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को कहा, ऐसा लगा जैसे कि बहुत बुरी तरह नाट लगा दी, और जबकि वो सब बहुत एडवांस थे, उनमें से भरत महाराज सबसे बड़े थे। उसके बाद भरत महाराज का राज्य चला 5.7 तक, 5-7वें अध्याय तक भरत महाराज की कथा चली। उसके बाद में भरत महाराज ने सब कुछ छोड़ के संन्यास लिया, बहुत कम उम्र में जंगल में गए, तपस्या की। वो भावा स्तर पे थे और वहाँ ध्यान में मग्न, और वो रहते रहते उन्होंने, उनका जो है स्नेह एक हिरण से हो गया। अब हिरण से जब स्नेह हुआ तो उसके बगैर वो खाना ना खाएं, नाश्ता ना करें, ध्यान में भी कहाँ हो तुम, कहाँ चले गए, मैंने कोई गलत बात तो नहीं कह दी, बुरा मान के चला तो नहीं गया, ऐसे सोच के वो हिरण के बारे में ध्यान करते करते उनकी उम्र हुई। तो उन्होंने जब उनको ये समझ लिए हार्ट अटैक हो जाता है या कुछ भी, वो भाव आप गैर फ्राम पे, यानी कि प्रेम टॉप मोस्ट सबसे ऊंचा स्तर है, उसे जरा ही नीचे भाव, भगवान की भाव भक्ति उनको मिल चुकी थी, लेकिन वो जरा सी मिस्टेक, जरा सी गलती से हम लोगों को सिखाने के लिए कि ये मिस्टेक, ये गलती हमसे भी हो सकती है, अंत काले च मामेवा, अंत समय में ये गलती हमसे हो सकती है, अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान को याद करना है, इसके लिए सततम कीर्तयन्तो मम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो अब जब उनसे बाद में याद नहीं रहा, गलती हुई, तो वो अगले शरीर में हिरण का ध्यान करते हुए शरीर छोड़ा, तो वो हिरण बन गए। सोचो विदेशों में कुत्ते और बिल्ली पालने का कितना शौक है। प्रभुपाद जी ने बहुत बहुत कुछ कहा कि मत कुत्ते बिल्ली की तरह जियो, मत पालो, लेकिन वहाँ कुत्ते बिल्लियों की प्रचुर मात्रा में, उनके साथ में सोना उठना बैठना खाना सब कुछ। अब सोच लो अंत समय में उनका क्या होगा, कितनी बुरी। इसीलिए कितनी जरूरत है, कितनी आवश्यकता है कि हम लोग इस भगवान की भक्ति के संदेश को सब जगह पहुंचाएं। तो फिर वो जड़, उसके बाद में हिरण का शरीर छोड़ के भरत महाराज जब अगले जन्म में ब्राह्मण के घर में पैदा हुए, तो पिताजी ने कहा, बेटा तुम क्यों गायत्री मंत्र सीख लो, कुछ पूजा पाठ कर्म कांड के 4-5 मंत्र सीख लो, जब बड़े हो जाओगे तो कैसे जिंदगी चलेगी, 4 पैसे कमाने होंगे, परिवार होगा। लेकिन जड़ भरत ने निश्चय कर रखा था कि इसे बात नहीं करेंगे। फाइनली उनके भाइयों ने निकाल दिया, पिताजी मर गए, अब वो तब भी छुप रहे। राहुगणा महाराज की सवारी निकल रही थी, जड़ भरत उधर जा रहे थे, एक सवारी के लिए उठाने वाले पालकी वाला कम था, उनको अपनी सेवा में लगाया, वो भी उठाने लगे, चीटियों को बचा के चल रहे थे। महाराज राहुगणा ने उनको डांट लगाई, ये सब क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारा राजा हूं। तब उन्होंने उनको ज्ञान दिया कि आज आप इस स्थिति में हैं, कल को कुछ और हो सकता है, अटैचमेंट हो, ये आप इससे जुड़िए मत, ये मत सोचिए आप राजा हैं। जैसे कि कोई भी किसी भी स्थिति में, आज प्रधानमंत्री हैं, टेंपल प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, गवर्नर हैं, तमाम लोग हैं, ये पद है, इस पद पे कार्य करना है बिना आसक्त हुए, कि पद से आदमी जुड़ ना चाहे, ये सबसे खतरनाक चीज है, ये सबसे मुश्किल चीज है, कि अगर पद से मोह जुड़ गया, पद एक ना एक दिन जाएगा, चाहे तो बुढ़ापे के कारण, चाहे रिटायरमेंट ले लेते हैं लोग, चाहे बीमारी लग जाए, चाहे आपसे कोई गलती हो जाए, चाहे आपका स्थानांतरण हो जाए, जैसे कि तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जब अमेरिका में बहुत जबरदस्त प्रीचिंग, उनका एक राधा दामोदर पार्टी, बस में रोज 10-5 सिर मुंडा के डिवोटी बना के, रोज 10-5 भक्त, हर जिस शहर में गए वहीं शो किया, वहीं एक मंदिर एक भक्त, वहीं छोड़ा एक मंदिर, इस लेवल पे, इस स्तर पे उनकी प्रीचिंग चल रही। एक दिन प्रभुपाद जी ने उनको लंच पे बुलाया, कहा कि तमाल तुम मेरे साथ में कल आके दोपहर का प्रसाद ग्रहण करो। अब तमाल कृष्ण महाराज को कुछ लगा, कुछ गड़बड़ है। अब प्रभुपाद जी ने उनसे कहा कि तुम ये राधा दामोदर पार्टी छोड़कर चीन और जापान और ये जो फार ईस्ट दूर पूर्व के देश हैं उसमें जाके भगवत धर्म का प्रचार करो। अब तमाल कृष्ण महाराज को ऐसा लगा जैसे आसमान में से ऊपर नीचे गिरे, उनको लगा मैं नहीं कर सकता, मुझे चाइनीज जापानीज कुछ नहीं आती, कभी गया नहीं, कुछ पता नहीं, अब मुझे जाना है। तो ऐसा गुरु का आदेश, जैसे प्रभुपाद जी भी कहते थे जब मुझे सपने में आके मेरे गुरु महाराज कहते थे देख सन्यास सन्यास लो, तो मैं सुबह उठ के कांपता था क्योंकि गुरु का सपना सच होता है। गुरु के और भगवान के संबंधित जितने भी स्वप्न हैं वो सच हैं, उसको कभी वो गलत ना समझे, कभी मिस्टेक ना करे, कभी ना समझे कि पता नहीं क्यों। जैसे कि मैं जब अमेरिका में था तो मेरी सेवा श्रीला प्रभुपाद जी को तैयार करने की थी, तो मैं कोई बहुत बड़ा भक्त नहीं हूं, भगवान की कृपा है, गुरु महाराज की प्रभुपाद जी की कृपा है। एक दिन सपने में मुझे दिखाई दिया, अच्छा हमारे जो वहां टेम्पल प्रेसिडेंट हैं थे नहीं है, तो वो काफी मतलब बहुत एडवांस, तो उन्होंने मुझे कहा कि प्रभुपाद जी को जब हम तैयार करते हैं उनकी नाक कान सब साफ करो, बगल में तौलियों को ऐसे करो ताकि पसीना आता है, कि भक्त प्रभुपाद है। जब मैं नया भक्त तो मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं प्रभुपाद जी है कि नहीं है, या प्रभुपाद जी है तो क्या इतना सब, लेकिन मैं करता रहा। तो एक दिन मुझे सपने में दिखाई दिया, मैंने प्रभुपाद जी की बगल में जब तौलियों को क्रॉस गीला करके ऐसे डाला और ऐसे वाइप करना शुरू किया, प्रभुपाद जी ने हाथ से उठा दिया। मैंने कहा प्रभुपाद जी आप यहां इसमें हैं, सपने में पूछ रहा हूं मैं, आप हैं? बोले यस आई एम हियर, मैं हूं। बता दिया कि मैं हूं, मैं यहां हूं, मैं मूर्ति नहीं हूं, मैं लिविंग, मैं अपने स्वरूप स्वरूप में यहां स्थित हूं। ऐसे ही भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि वो कैसे गंभीर में गए और उनसे कहा कि मैं अपनी मूर्ति में, और फिर दिखाई नहीं दिए मूर्ति के अंदर। तो प्रभुपाद जी भगवान और प्रभुपाद जी से शुद्ध भक्त अपने विग्रह में रहते हैं। तो फिर चलो कहानी आगे बढ़ाते हैं, सच्ची कहानियां हैं, मनोहर कहानियां हैं और दृष्टांत हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। भागवतम एक ऐसा ग्रंथ है अगर पढ़ने बैठ जाओ और किसी के साथ में एक दो लोग बैठ जाए तो आदमी उठना मुश्किल हो जाए, क्योंकि प्रभुपाद जी का तात्पर्य है और ये कथा का वर्णन और भक्तों के प्रवचन इतने मनमोहक हैं कि आदमी जैसे कि अगर जैसे भगवद्गीता के दूसरे चैप्टर के दूसरे अध्याय के महात्म्य में लिखा हुआ है कि एक जगह भगवद्गीता का प्रवचन हुआ उस पेड़ के नीचे और वहां शेर भागता आया, बकरियां देख के हिला नहीं, उसकी भूख प्यास खत्म हो गई। ऐसे ही ये प्रवचन, ये भगवत गीता, ये गीता के सार इतने मनमोहक हैं, इतने मंत्र मुग्ध करने वाले हैं कि भूख प्यास सब कुछ खत्म। परीक्षित महाराज 7 दिन तक सब कुछ खत्म। ये अगर हमारा स्तर आ जाए या हो जाए और कुछ का है भी तो ये भगवान के चरणों में प्रेम है। महाराज रघुगणा को जड़ भरत महाराज ने पीच किया, बताया, समझाया, फिर आगे बढ़े, उसका कथा आगे चली और फिर बात आई कि फॉरेस्ट ऑफ मेटल एंजॉयमेंट, कैसे ये सेंस इंद्रिय तृप्ति का ये कैसा जंगल है। जंगल के अंदर व्यापारी लोग जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्योंकि वहां पे कुछ कीमती वस्तुएं लकड़ी फल फ्रूट जड़ी बूटी उनको इकट्ठा कर उनका व्यापार करते हैं, और जंगल के अंदर मनमोहक चीजें हैं, लेकिन वहां जंगल में जानवर हैं, फेरोशियस एनिमल, उनसे बचना मुश्किल, और उस जड़ी बूटियों को उन महत्वपूर्ण चीजों को जंगल में जो व्यापारी लोग इकट्ठा करने जाते हैं उसको कहते हैं इंद्रिय तृप्ति, और जो वहां जानवर हैं सियार शेर उनको तुलना की गई है पत्नी और बच्चों से। अब यहां माताएं बैठी हैं तो इन माताओं की बात नहीं हो रही है, ये उन माताओं की बात हो रही है जो पति को या बच्चों को या परिवार को अपनी तृप्ति के लिए सोचते हैं। तो जो वैष्णवीज हैं, जो वैष्णव माताएं हैं, उनके लिए ये बात लागू नहीं होती, भक्तों के लिए भी ये बात लागू नहीं होती, क्योंकि हम लोगों का उद्देश्य इस दुनिया में रहकर भगवत धाम को, भगवत भक्ति को प्राप्त करता है। तो यहां पे जो ये विषय चला, इसके बाद महाराज प्रिय महाराज परीक्षित महाराज ने और थोड़े सवाल किए और ये कहा कि आपने मुझे बता तो दिया, सुखदेव गोस्वामी से कह रहे हैं कि भाई ये प्रियव्रत जी ने जब रथ को घुमाया तो सात हिस्सों में उनके पहिए से ये पूरा भूमंडल बट गया। भूमंडल को हम लोग इस पृथ्वी को ना समझ लें, ये पृथ्वी भूमंडल नहीं है, पूरा ब्रह्मांड भूमंडल है, उसको सात हिस्सों में बांटा, उसमें तीनों लोक हैं, भूर्भुव स्व, गायत्री मंत्र में ओम भूर्भुव स्व। तो ये जो भूमंडल है, जो पृथ्वी है, ये अलग है, लेकिन जो भूमंडल है वो बिगर बड़ा यूनिवर्स। उसके बाद इस श्लोक में ये बात आई कि किस तरह से इस दुनिया में जिया जाए, कि किस तरह से हम लोग रहें। बहुत 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 जगहों पे ये सवाल हमेशा आता है कि मेरा नौकरी है, मेरे परिवार है, मेरे बच्चे, समय नहीं मिलता, ना बुक डिस्ट्रीब्यूट किताबें बांटने का प्रभुपाद जी की, ना किताबें पढ़ने का। इवन कई बार हमारे मंदिर में जो हमारे फुल टाइम ब्रह्मचारी और भक्त हैं उनको भी समय नहीं मिलता ये किताबें पढ़ने का। लेकिन मेरी ये सब लोगों से विनती है कि अगर ये किताबें ना पढ़ी, अगर ये प्रवचन ना सुने, तो पता क्या समस्या आएगी। घंटी क्यों बजाते हैं पता ही नहीं, शालिग्राम शिला से बादाम तोड़ के खाने शुरू कर दें, के पत्थर है, अर्चे विष्णु शिलादि गुरु सुंदरमति, गुरु लगने लगेगा जैसे हम ऐसे ही हैं, और वैष्णव को ये पंजाबी है, ये हिंदू है, ऐसे कर करके वो तो वहां का है, ये तो यहां का है, ऐसी बातें कर करके सारा माइंड, सारा दिमाग, सारे वैष्णव अपराध ये सब इकट्ठे। प्रवचन के अंदर एक बार अब मैं थोड़े दो तीन प्रभुपाद जी के स्मरण सुना देता हूं। प्रभुपाद जी सुबह के वाक के लिए जाते थे, जपा वाक के लिए, तो कुछ भक्त लोग साथ जाते थे और कुछ भक्त लोग बाहर माला कर रहे, अंदर क्लास चल रही थी। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम यहाँ कैसे भाई, भाई भैया आप लोग भगवत भागवत में क्लास में जाइए। तो किसी ने कह दिया कि प्रभुपाद जी वो एक नए भक्त हैं, वो वहाँ प्रवचन कर रहे हैं, अपने घर पर माला कर लें। तो प्रभुपाद जी नया पुराना कुछ नहीं, इन नए पुराने के चक्कर मत पड़ो, प्रवचन अटेंड करो। नए और पुराने में फर्क बताऊं क्या है, नए पुराने में क्या है कि नया भक्त और पुराने भक्त में एडवांसमेंट को देखो, कौन कितना आगे है, और आगे का पता इससे नहीं चलता कि वो 20 साल से हरे कृष्ण मंत्र कर रहा है या 30 साल से कर रहा है, आगे का पता चलता है कि जो जिस स्तर पे है उस स्तर से बहुत नीचे और बहुत हम्बल, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत साधारण तरीके से अपने आप में घमंड, ये घमंड इस भक्ति को खत्म कर देता है तुरंत, पता भी नहीं चलेगा। जैसे ही पद से और इससे ये हुआ कि ये मैं हूं, मैं इतना बड़ा प्रीचर हूं या बुक डिस्ट्रीब्यूटर हूं या मैं ये सेवा करता हूं या वैष्णव अपराध किया, सब कुछ खत्म। जो साधारण भक्त हैं अपने आप को हम्बल रूप से उपस्थित रहते हैं, उनको अपने पढ़ने के लिए, स्वाध्याय के लिए समय निकालना चाहिए। एक बार प्रभुपाद जी अपने रूम में बैठे हुए कृष्णा बुक पढ़ रहे थे, उन्होंने लिखी, उन्हें सब मालूम, कृष्णा बुक पढ़ रहे हैं। एक डिवोटी एंटर हुआ, प्रभुपाद जी को देखा, प्रभुपाद जी कृष्णा बुक पढ़ रहे हैं, इतने बड़े आचार्य, परम वैष्णव और इतना परम भागवत, प्रभुपाद जी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के प्रिय है, उनके द्वारा भेजे हुए, वो भी कृष्णा बुक पढ़ रहे हैं। तो यहां ये समझने की बात है कि किताबों का अध्ययन बहुत जरूरी है सबके लिए। अध्ययन कैसे होता है, किसी को साथ में ले लो, भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव कर लो, या प्रवचन को अटेंड करो। तो जैसे मैं जब अमेरिका में था तो प्रभुपाद जी के प्रवचन गाड़ी में कैसेट, उस जमाने में कैसेट आया करती थी, $2,000 की कैसेट ऑर्डर करके पूरे दो बड़े बड़े बॉक्स आए, 80 फोल्डर, उसके अंदर हर एक में 18 कैसेट, लगाई निकाली। अब तो सब कुछ MP3 पे अवेलेबल है, तो वो सब कैसेटें गाड़ी में लगा के, एक पैड लगा के, प्रभुपाद जी ने कोई भी वर्ष बोला, क्यों बोला, कहां बोला, तुरंत लिखो, घर जाके पढ़ो, उसके अंदर क्यों ये वर्ष आया, कहां आया, किस चैप्टर में आया, ढूंढ लो, फिर उसको आगे पीछे पढ़ के देखो। ये सब करते 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 सारे जो प्रभुपाद जी ने हजारों श्लोक बोले उसको कहां कैसे इस्तेमाल करना है, अपने प्रीचिंग में, अपने प्रचार में कैसे दूसरे के आर्ग्यूमेंट को जवाब देना है, ये सब प्रभुपाद जी के प्रवचनों में है। हम सब लोगों को, जैसे एक बार दानवीर महाराज हमारे मंदिर में अमेरिका में आए, तो उनकी बहुत सारी किताबें अपनी भी थी और भक्तों की भी थी, तो वहां कोई नए भक्त आए, मैंने कहा महाराज जी किताबें हम इनको दो, नहीं मेरी किताबें इन भक्तों को, इन नए लोगों को नहीं, प्रभुपाद जी किताबें दो पहले, प्रभुपाद जी किताबें पढ़वाओ पहले, बाकी भक्तों का, जब सारे भक्त लोग प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ लें उसके बाद में और किताबें शुरू करें। ये जरूर है कि कई बार हम लोग बायोग्राफी, जो हमारे इस्कॉन में बड़े बड़े महान सन्यासी हैं आज और हुए, उन्होंने कुछ अपने संस्मरण लिखे हैं, क्योंकि वो प्रभुपाद जी संबंध में हैं, तो वो हम लोग पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो भी लिविंग भागवत हैं, एक ये भागवतम है, वो जीवित रूप में भागवतम है, तो वो हमें पढ़ने चाहिए। तो इस तरह से ये प्रभुपाद जी, अब मैं प्रभुपाद जी के बारे में एक दो चीजें बताना चाहता हूं। जैसे कि यहां पे ये बात आई कि गुरु इसमें आया कि प्रियव्रत को ये कहा, परीक्षित महाराज ने जब भी पूछा कि उनके रथ को चलने से क्या हुआ, प्रियव्रत महाराज को पहले ही बता दिया था कि भाई वो कैसे रथ उनका चला, और इसके बाद में किस तरह से महाराज परीक्षित को उनके गुरु सुखदेव गोस्वामी ने पहले उपदेश दे रखा था, इसके बाद में उन्होंने गुरु का उपदेश का पालन, तो गुरु के आदेश का पालन का यहाँ विषय काफी गंभीर है। हमारे यहाँ इस्कॉन में जो भी कोई दीक्षा लेना चाहता है तो उनसे कहते हैं पहले आप हरे कृष्ण मंत्र की माला करें, श्री प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलें, उसके बाद में जो ये डिसाइपल कोर्स है, शिष्य के लिए क्या बातें आवश्यक हैं, क्या क्या ग्रंथ हमें पढ़ लेने चाहिए, कौन कौन सी किताबें, किन किन सवालों का जवाब हमारे पास होना चाहिए, हमारे अंडरस्टैंडिंग में गुरु कौन है, गुरु तत्व क्या है, हमारे जैसे पिताजी हैं तो चाचा और ताऊ भी हैं, ऐसे ही एक हमारे गुरु हैं, लेकिन उसके साथ में जो प्रभुपाद जी के और डिसाइपल्स हैं, हमारा उनके प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, माई गुरु हम इतना ना करें कि बाकी गुरुज को ऑफेंड कर दें, उनको हम लोग उनका अनादर कर दें, उनकी सेवा ना करें, ये भी गुरु तत्व की बात समझने की है। चाचा कई बार पापा से भी ज्यादा अच्छा लगता है, तो ऐसा भी हो जाता है, ताऊ जी कई बार पापा से भी ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो कोई वो शिक्षा गुरु हैं, उनको भी सेवा करनी चाहिए, उनको भी हमें प्रणाम करना चाहिए, उनसे भी हम लोग कुछ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, पर्सनल कुछ अपनी बातें पूछ सकते हैं। ये डिसाइपल का कोर्स है, क्यों है कि इसमें हमें सुबह उठना है, कई बार हमारे भक्त आरती में नहीं आते हैं तो हम लोग एक दूसरे को सहारा, ये नहीं कि तू आता क्यों नहीं, तेरे को कभी देखा नहीं, ऐसे नहीं। जैसे प्रभुपाद जी ने एक बार, एक भक्त जर्मनी के अंदर, लाइट जली हुई थी, एक भक्त बाहर बैठा हुआ था, रंग पंखा चल रहा, लाइट जली हुई है, प्रभुपाद जी बाहर थे, सॉरी वो बाहर बैठा हुआ था, प्रभुपाद जी आए, अब आए देखा, अब वो अंदर लाइट जल रही, पंखा चल रहा और वो भक्त बाहर बैठा हुआ, आगे एक ही लाइन बोले, यू आर यूजलेस। इतनी टफ बात, मुश्किल बात, प्रभु, वो भक्त नया, एक हफ्ते पहले उसने ज्वाइन किया, वो शाम को, सुबह बात हुई, शाम को वो अपना सामान पैक कर चुका था, और प्रभुपाद जी की गुरु, ऐसे गुरु जो जैसे कहते हैं ना कि एक तो ओमनीपोटेंट कृष्णा है और ओमनीशियंट, मतलब प्रभुपाद जी को सब कुछ भगवान बता देते थे, ये गुरु की महिमा होती है। गुरु सब कुछ नहीं जानता, लेकिन जितना जानना है, जो जरूरी है, वो भगवान उनके हार्ट में तुरंत आके बता देते। तो प्रभुपाद जी उसको बुलाया और बुला के हाथ पकड़ के कहा कि तुम मेरे लिए बहुत बहुत, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं गुरु की पोजीशन में, गुरु के स्थान पे हूं, मेरा तुम्हें करेक्ट, तुम्हें सही बात बताने का मेरा कर्तव्य है, और मैं, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए क्षमा जा। तो प्रभुपाद जी की आंखों में से एक आंसू निकला, कितना कंपैशन, कितनी दया, कितनी करुणा, एक एक भक्त को प्रभुपाद जी ने अपने खून से सींच के बनाया, 1 गैलन ब्लड एक भक्त को बनाने में, ये प्रभुपाद जी ही कर सकते थे। हम आज प्रभुपाद जी के आदेश को आगे ले जा रहे हैं, दूसरे की कमियों को हम कभी नहीं बताना चाहेंगे, लेकिन जो कुछ भक्त ऐसी पोजीशन में हैं, ऐसी स्थिति में हैं जिनको इनका एक कर्तव्य है कि वो दूसरों को ट्रेन करें। जब ट्रेन करेंगे तो दो चार बार कुछ टोकेंगे, कोई बुरा नहीं माने। मैं सॉल्ट लेक सिटी के मंदिर में होली का फेस्टिवल वहां होता है तो वहां था, उन्होंने बोर्ड पे लिखा हुआ था यू गेट नेक्स्ट लेवल ऑफ सेवा और नेक्स्ट लेवल ऑफ पोजिशन वेन यू परफेक्टली डू द सेवा और द जस्टिस टू द करेंट पोजिशन। आप भक्ति में आगे आपको और भी ऊंचे लेवल पे रखा जा सकता है मैनेजमेंट में, जब आप नीचे के स्तर पे बढ़िया परफॉर्म करें। बढ़िया परफॉर्म का मतलब क्या है? सबको जोड़ना है, सबको लाना है, कोई जाए उसको मना के लाना है। कोई रूट अगर एक भी भक्त चला गया मेरे कारण तो मेरी भक्ति बेकार है। अगर मेरे चेस्टाइजमेंट से, मेरे करेक्शन से भक्त छोड़ के चला गया, उसे ये मेरा प्यार और मेरा जो मेरा उसके प्रति जो उसे महसूस अगर नहीं होता तो मैं डांट नहीं पाऊंगा, समझा नहीं पाऊंगा। और डांटने में अपनापन, जैसे मैं प्रोफेसर हूं तो बच्चों को कई बार डांटता हूं, बुलाता हूं उनको कमरे में कि तो तुम कहां थे, क्लास में नहीं आते हो, और उनका हाथ पकड़ कर उनको प्यार से बताता हूं कि बेटा घर में तुम्हारे मां बाप है तो यहां पे मैं हूं, तुम्हारे मां बाप ने फीस देकर मेरे जिम्मे तुम्हें रख दिया, तुम्हें मां बाप की डांट कैसी लगती है? बुरी क्या लगती है? माँ बाप को छोड़ के भागे कि नहीं, तो मुझे भी छोड़ के कोई जाएगा नहीं, मेरे साथ रहोगे, मेरी क्लास में रहोगे, मेरी क्लास अटेंड करोगे। ऐसे कोई भी भक्त यहां से जाए नहीं, जो भी आ जाए उसको हमेशा के लिए जोड़ना है, किसी को भी ऐसी बात नहीं कहनी जो आदमी छोड़ के चला जाए। तो यहां पे प्रभुपाद जी इस श्लोक में जो बता रहे हैं वो ये है कि दो श्लोक हैं जो चैतन्य चरितार्थ में कहीं आए हैं, एक तो यही यदि दूसरा है प्रापंची कथ्या बुद्धिहारी संबंधी वस्तु ना मुमुक्षु भी परित्यागो फाल्गु वैराग्य उच्यते। उससे पहला है क्या है पहला उससे? एनीवन लाउडली मैंने कहीं लिखा है हल्का सा ध्याय यथारम उपिंजता निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य उच्यते। आई फॉरगेट द फर्स्ट लाइन, पहली लाइन में भूल गया। तो यहाँ पे अनासक्त से विषयान यथारम उपिंजता निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ये जो सारा वर्णन किया गया क्या के कैसे तीनों लोक हैं, ब्रह्मांड है, अनेकों अनेकों ग्रह हैं, परस्तस्मास्तु भावन्यो वक्ता वक्ता सनातना, कि इतना जो तुम्हें दिख रहा है इससे कई गुना सारे साइंटिस्ट लोग, इंडिया ही, भारत भी, भारत की सरकार भी अभी मिशन भेज रही है कहीं, क्या सब कहाँ भेज के कहाँ जाओगे, क्या करोगे? प्रभुपाद जी ने कहा कि इस सब की, जैसे कि अमेरिका में निकला पहली बार जब प्रभुपाद जी अमेरिका में पहुंचे थे, तो वहाँ जब ये नील आर्मस्ट्रांग ने अपोलो यान 11 अपोलो 11 चंद्रमा पे लैंड हुआ तो अखबार में आया मानव ने चंद्रमा पर विजय प्राप्त की, ऐसे करके, यानी कि वहां पहुंचे, जो भी वहां पहुंचे तो खैर कभी है ही नहीं। इवन कई भक्त उस वक्त इस्कॉन छोड़ के चले गए जब प्रभुपाद जी ने कहा कि कोई गया नहीं गया, और आज नील आर्मस्ट्रांग और उसके साथ के लोगों ने पहले ही बता दिया कि, और ओबामा तक ने कहा कि मुझे नहीं मालूम को गया नहीं गया। उस वक्त प्रभुपाद जी ने तभी कह दिया था बहुत भक्त लोग छोड़ के चले गए, नए भक्त थे अमेरिकन डिवोटीज, नहीं 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 चांद पे गए। तो यहां पे कहने की बात यह है कि ये सब वर्णन तो प्रभुपाद जी ने जब वो अखबार में देखा कि अपोलो पे विजय, अपोलो यान चंद्रमा पे उतरा, आदमी के चरण चांद पे, सब लोग का पारा सातवें आसमान पे, और अगले दिन प्रभुपाद जी ने कहा ये सब फ्रॉड है, इनमें बिलीव मत करना। अगले दिन अखबार में खबर आई कि अगर इस चंद्रयान के, इस अपोलो के मिशन को लगातार बढ़ाना है, आगे चलाना है, तो हमें 1% टैक्स बढ़ाना होगा। प्रभुपाद जी बोले सी मैंने कल ही बताया था फ्रॉड है, ये तुम्हारे पैसे को, मेहनत से कमाए हुए पैसे को इसमें ऐसे फूंकना, यहां जा वहां जा, ये सब चीज, और ये साइंटिस्ट लोग ब्लफ है। अमेरिका में एक बार लोगों ने सोचा कि ऐसे विमान बनाए जाएं जो कभी नीचे ही ना उतरे, उड़ते ही रहे, और ऐसे विमान को उड़ाने के लिए जो कभी नीचे ही ना उतरे उसको न्यूक्लियर फ्यूल से उड़ाना है। सब अरेंजमेंट हो गया, जहाज बन गए, हवाई जहाज, मैं देखने गया लेकिन मुझे दिखाए नहीं उन्होंने, वहां रखे हुए हैं अभी भी, जहाज बना, सब कुछ हुआ। और जब ये हो गया कि अब इसमें न्यूक्लियर सेटअप हो गया और उड़ाने की बात हुई, तो किसी ने कहा धीरे से, और कई मिलियन बिलियन खर्च हो चुका ऑलरेडी, उधर किसी ने कहा कि भाई ये न्यूक्लियर बम अपने सर पर उड़ाने की क्या जरूरत है, बाहर की अपने ही दुश्मन खुद, दूसरा कोई अटैक करेगा ये क्रैश हो गया तो अपने ही बम अपने ऊपर। कहा ये बात तो सही है, ये बात तो सही है, कह रहे खड़े कर दो इनको, खड़े करो, कोई नहीं उड़ाएगा इसके बाद, दिस इज अमेरिका, दिस इज सिविलाइजेशन। सारा पैसा 30-30% टैक्स ले लेके लोग रात दिन दो दो तीन तीन नौकरियां कर करके चार पैसे कमाए, बच्चों को पालने में सरकार को, सरकार ने ऐसे फूंक के खत्म कर दिए। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। प्रभुपाद जी ने अपने गुरु के आदेश को पालन किया, उनके गुरु ने कहा विदेशों में जाओ, भक्ति का प्रचार करो, अंग्रेजी में किताबें छापो। कोई भी दूर दूर तक ऐसा साइन नहीं था कि प्रभुपाद जी ये सब कर सकते। 69 की एज में, उम्र में वो गए, और उन्होंने कितने सब कुछ किए, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद। गुरु मुख पद्मा वाक्य चिते तक कोरियो आख्या और न कोरियो माने आशा। गुरु के मुंह से निकली हुई बात को हार्ट में ले। कई तरह के शिष्य होते हैं, एक तो गुरु कई कई बार कह लिए कि बेटा भैया मत, भैया प्रभु जी ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना, और वो वही करता मिलेगा। कुछ शिष्य ऐसे, कुछ शिष्य ऐसे गुरु ने कहा ये करना, करूंगा गुरु जी बस जैसे कैसे करूंगा, देखता हूँ कैसे होगा, कि तुम्हें इनसे लड़ना नहीं है। हाँ गुरु महाराज बहुत खराब है वो प्रभु जी, लेकिन मैं फिर भी गुरु जी तरह टाइम निकालूंगा। और एक ऐसे कि गुरु ने कहा उसको दिल में, और एक ऐसे जो गुरु के आंखों के इशारे को समझ के काम करते, जो गुरु की भावनाओं को, गुरु के मन को। गुरु महाराज का प्रभुपाद जी के व्यास पूजा में यही सब लोग लिखते हैं कि सब गुरु, सारे गुरु यही कहते हैं कि देखो अगर तुम मुझे कोई श्रद्धांजलि देना चाहते हो, मेरे लिए कुछ तुम मेरे को ऑफरिंग, मेरे व्यास पूजा को मनाना चाहते हो सच में, तो बस एक काम बहुत जरूरी है कि सब कोऑपरेशन से काम करो और माला चढ़ और भागवतम के प्रवचन वगैरह अटेंड करो, ये सब जरूरी है। नित्यम भागवत सेवे, चार प्रिंसिपल अपने आप आ जाएंगे। चार प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए कोई जिम्नास्टिक जिम में जाने की जरूरत नहीं है। हमारा जिम तो ये मॉर्निंग प्रोग्राम है। एक बार अमेरिका के अंदर जब नए नए प्रभुपाद जी ने मूवमेंट शुरू किया, नई नई कम्युनिटीज बनी, किताबें बटी, लाखों डॉलर आए, लाखों लाखों डॉलर के मंदिर बने, तो किसी ने कहा कि ये जरूर कुछ गड़बड़ है, इंडिया की तरफ से ये सब ये हो रहा है। और ये एंड में कुछ, क्योंकि वहां ऐसा चल रहा था अमेरिका के अंदर, बहुत ट्रेंड था विदेशों में कि कोई भी आया उसने कोई कल्ट चलाई, जैसे आजकल वो ब्लू गेम, ब्लू वेल गेम चला हुआ है कि उसमें हर रोज एक असाइनमेंट है और एंड में असाइनमेंट है कि अपनी नस काट के मर जाओ। तो ऐसे ही वहां पे होता था कि ये गुरु कोई आया और उसने दुनिया भर की बातें बताई और एंड में सबको कहा कि फांसी लगा के मर जाओ। ऐसे हुआ वहां पे कहीं कारण, तो उन्हें लगा CIA वालों को कि भाई कुछ गड़बड़। तो दो उन्होंने अपने स्पाई उसमें भेजे न्यू वृंदावन के मंदिर में, उन्हें बाल बाल मुंडा के, चोटा रख के, वही सब उसी स्टाइल में सब तिलक विलक सब लगाना सीख भी के वो आए थे भक्तों से ज्वाइन कर लिया। और 3 दिन में वहां कहीं ये काट, सब्जी काट, धार गाय की धार निकाल, पोछे लगा, कुकिंग चल रही, आरतियां हो रही, प्रसाद बन रहे, सब्जियां कट रही, 3 आरती, ये सुबह शाम भगवान जी ड्रेस हो रहे, कपड़े सिल रहे, जाने क्या क्या, उन सबको ये झाड़ू पोछा, गाय का गोबर हटाओ, ये करो, गाय का दूध निकालो। 3 दिन बाद जब वो हाफ गए तो बोले आगे, कहने लगे भाई आप लोग, भाई हम भी इतना नहीं कर सकते, हमें ट्रेनिंग दी हुई, हम मिलिट्री के स्पाई हैं और हमें तो पहाड़ पर चढ़ना, नीचे उतरना, कूदना सब कुछ सिखा रही, इतना काम हम भी नहीं कर सकते, हमारे कब्जे में नहीं है। हमने बहुत ट्रेनिंग ली, बहुत उछल कूद करी, क्रॉलिंग करी, रस्सियां चढ़ी, उछल कूद करी, पहाड़ों पर चढ़े, लेकिन जो आप 24 में से तुम लोग 4-6 घंटे मुश्किल से सोते हो, वो भी आधे पूरे भी नहीं सोते, और सुबह उठते ही माला में लग जाते हो 4 बजे के, 4 बजे तो हम सोना शुरू करते हैं। आप लोग भक्त लोग क्या आप लोग हैं। तो कहने लगे आपके चरणों में वो सब लेट के दंड पर प्रणाम करके प्रभुपाद जी को चले गए। कहने लगे भाई करो जो करना करते रहो। ऐसे ही ये जो हमारी किताबें हैं इनकी पढ़ने का महत्व प्रभुपाद जी ने कई जगह बताया। एक बार प्रभुपाद जी के पास में मैक्सिको में रथ यात्रा निकली, मिस मैक्सिको को लेकर प्रभुपाद जी के पास सारे भक्त लोग आए। प्रभुपाद जी मिस मैक्सिको हैं, बड़ी सुंदर हैं, और बोले कि इनको प्रभुपाद जी हमारा प्रसाद बहुत अच्छा लगा, ये जो पाइन एप्पल का हलवा है ये भी ना देसी घी का बहुत अच्छा लगा, और जो ये कलर्स हैं, ये डांस है, ये जो चैंटिंग है सब बहुत अच्छी लगी। तो प्रभुपाद जी ने एक ही लाइन बोली बस, कहा कि इन्होंने हमारी किताबें भी पढ़ी क्या, देखी क्या, ली क्या? तो बगैर फिलॉसफी के ये सारा फेरेटिज्म होना होकर रह जाए। हमें किताबों पर रहना है, बुक्स आर द बेसिस, हमारे ग्रंथ हमारे आधार हैं, बगैर किताबों के हम चलते नहीं, और अगर हमारी किताबें कोई पढ़ता नहीं तो हमारे काम का नहीं। हमें किताबें पढ़वानी है, चाहे तो सेमिनार दें, प्रवचन करें, कीर्तन करें, कहीं भी जाएं, किसी भी प्रोग्राम का सक्सेस है कि किताबें गईं। ये हमारा सबसे मूल, प्रभुपाद जी ने कहा कि फिलॉसफी समझ में आनी चाहिए, इनको हलवा तो खिला दिया अच्छा किया क्योंकि तो इनका थोड़ा हार्ट खुलेगा, कीर्तन सुनवा दिया ये भी अच्छा किया और हार्ट खुलेगा, लेकिन किताब और जरूर समझा देना इनको कि ये क्या है, ये हजारों साल का सनातन धर्म है, ये जरूर बता देना। और प्रभुपाद जी गुरु के आदेश से गए, और प्रभुपाद जी सिंप्लिसिटी देखो, इतने बड़े प्रभुपाद, पूरा इस्कॉन उनका, पूरा उन्होंने सब कुछ चलाया सिंगल हैंडली, एक आदमी पूरा विश्व को हिला के रख दिया। पूरे विश्व में प्रभुपाद जी का नाम आज भी किताबों में आ चुका, विदेशों में भी और इंडिया में भी स्टैम्प बन चुके उनके कमेमोरेशन का, इतना सब कुछ हो चुका। एक बार एयरपोर्ट पर प्रभुपाद जी आए, जनरली जब भी प्रभुपाद जी आते थे तो अराइवल एड्रेस, अराइवल एड्रेस का मतलब होता है कि जैसे प्रभुपाद जी आएंगे, आके कहीं वो एक लाउंज वाउंज बुक कर देते थे तो उसमें आके प्रभुपाद जी बैठ देते व्यास आसन की तरह बना के, उसमें सैफरन चादर वगैरह डाल के, गद्दी वगैरह लगा के, माला वाला पहना के सब लोग बैठ जाते थे। तमाम पत्रकार माइक वाइक लंबे लंबे लेके स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी सब सवाल पूछते थे। तभी किसी ने पुलिस वाले ने कहा भाई यहाँ आप अभी इस तरह गैदरिंग नहीं कर सकते। तो ये बात किसी एक छोटे से भक्त को नए जो वहीं थे उनको बताई कि भाई आप लोग जैसे भी इकट्ठा है अपने गुरु वगैरह से कहो कि अभी यहाँ इकट्ठे ना हो क्योंकि यहाँ पे कुछ इशू है सिक्योरिटी का। तो उस भक्त ने एक वहीं कुर्सी बिछी हुई थी खड़े होकर कहा कि आई जस्ट केम टू नो दैट वी कैन नॉट स्टैंड हियर बिकॉज अथॉरिटीज डिडंट वांट अस टू स्टे हियर सो लेट्स लीव, अभी हमें जाना होगा। जैसे ही कहा श्रीला प्रभुपाद जी एकदम खड़े हुए और एकदम चलना शुरू कर दिया। सबसे पहले प्रभुपाद जी खड़े हुए, इसका क्या मतलब है? आदेश का पालन। मंदिर में हम सब लोग स्वेच्छा से भक्त बनने आए हैं या वॉलंटरली सेवा कर रहे हैं? हमें कोई अगर ये कह दे यहां से यहां खड़े हो जाओ, ऐसा ना हो कि क्यों कह दिया, ये कोई ना सोचे। क्योंकि प्रभुपाद जी का मतलब यहां पे ये है कि उन्होंने ये एग्जाम्पल रखा, उदाहरण रखा कि अथॉरिटी के आदेश का पालन करो। प्रभुपाद जी ने एक बार बैठा कौन भी किसने कहा हम यहां बैठे हुए हैं, दो लोग बैठेंगे, मैं बैठा हूं बाकी लोग चले जाएं, ऐसा भी नहीं कहा, एकदम उठ के एग्जाम्पल सेट किया, उठ के चल दिए। ये चीजें जो हैं प्रभुपाद जी ने अपनी लाइफ में जो दी इनको हमें फॉलो करना है। और ये जो भक्ति का पाथ है, बस ऑलमोस्ट ये लास्ट पॉइंट है, जो भक्ति का पाथ है इसके अंदर एक उत्साह, जैसे जैसे भक्त पुराने हो जाते हैं उत्साह घटता जाता है। पोर्टलैंड में कुछ भक्त लोग थे तो हम लोग बॉयज से रथ यात्रा में लॉस एंजेलिस ड्राइव करके पहुंचे, वो पोर्टलैंड से ड्राइव करके पहुंचे, तो मैंने उन भक्तों के देखा यहाँ टाँके लगे हुए हैं छः, खैर वो तो बाद में देखा, पहले उससे पहले ही घटना बता दूं कि वहाँ टेम्पल प्रेजिडेंट हैं तो सुहास प्रभु, उन्होंने सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम में अनाउंस किया कि भाई आज थोड़ा मुझे एक्स्ट्रा हेल्प चाहिएगी, जो कि मतलब प्लान नहीं थी, बाकी सबकी सेवाएं फिक्स हैं। जो भक्त बाहर से आए हैं रथ यात्रा अटेंड करने के लिए उनसे ये है कि एक तो रथ वहाँ पुलिस का कुछ सिस्टम है कि रथ के दोनों तरफ दो लोग डंडा पकड़ के चलेंगे, पहिए के पास कोई आना जाए किसी के चोट ना लग जाए, और कुछ आलू उबले हुए हैं तो वो पील करने हैं जो प्रसाद बटेगा। तो तीन चार भक्तों ने एकदम हाथ खड़े किए और वो पोर्टलैंड वाले भक्त हैं, मैं उनको जानता था, तो इतना एंथुजियाज्म उनमें था, एकदम हाथ खड़ा किया, रथ यात्रा अटेंड करने आए कि प्रभु जी वहाँ रथ यात्रा निकलेंगे हम ये आलू छीलेंगे बैठ के, एक बार भी नहीं, प्रभु जी वहाँ पे ये होगा कि हम ये यहाँ पे शो निकल जाएगा, आरती निकल जाएगी, अभिषेक निकल जाएगा, नो, बैकग्राउंड में डिओटीएसएस खाने में नमक, उसके बगैर खाना अच्छा लग नहीं सकता, और वो दिखता कहीं नहीं। तो जब मैंने, नित्यानंद नाम है उनका, मैंने उनसे कहा प्रभु आपके क्या हुआ? बोले कल जब पोर्टलैंड से ड्राइव करके आ रहे थे तो हमारी गाड़ी का टायर फटा, गाड़ी ने तीन कलाबाजियां खाई, और तीन कलाबाजी खा के खैर हम बच गए, बेल्ट लगी हुई थी, गाड़ी को हमने वहीं दिया, दूसरी गाड़ी मंगवाई, उसमें यहाँ पहुंचे और ये सब टाके वाके लगे हो। और उन्होंने कहा कि कहाँ आलू छीलने, कहाँ डंडा पकड़ना, कहाँ क्या करना है सर, हमें प्रभु जी हमें बताओ। तो हमें बड़ी शर्म आई कि हमने कहा हम यहाँ बैठे हुए हैं और ये 7-8 घंटे की ड्राइव करके आए, चोट लगी हुई, टाके लगे हुए, और इनके अंदर इतना जोश। तो ये भावभक्ति, ये जो जोश है, जो ये उत्साह है, ये चाहिए आज, और कुछ नहीं चाहिए। कि ये ना हो जाए कि मैं कैसे करूं, मुझे ये कह दिया, मुझे वो कह दिया, ऐसी बात किसी के मन में ना आए। आज हम लोग ये यहां से मैसेज लेके जाए कि गुरु की आज्ञा, प्रभुपाद जी की इच्छा, प्रभुपाद जी की वैष्णव इच्छा है, जो भी चाहिएगा वही सब चीज मिल जाएंगी, वही इंग्रेडिएंट आ जाएंगे, वही सारा साधन आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो प्रभुपाद जी का मिशन है, एक बार हम डिजायर करें, एक बार इच्छा प्रकट करें, प्रभुपाद जी मैं आपको सर्व करना चाहता हूं, और सर्विस में यह है कि जो मुझे आएगी सेवा, मैं उसे भगवान का प्रसाद मान के ग्रहण करूंगा और उस सेवा को करूंगा। और मेरी कोशिश ये रहेगी, मुझे बुरा लग सकता है, मुझे बुरा लगेगा कि ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरा एरिया नहीं है, ये उसका एरिया, ये उसका, ये उसकी सेवा, ये मेरी सेवा, ऐसी बात मन में आ सकती है, लेकिन मैं उसको जगह नहीं दूंगा। मैं एकदम उत्साह से आगे आऊंगा। तो यहीं पर हम लोग, और भी बहुत चीज़ें श्लोक में आई हैं कि किस तरह से भगवान की सेवा में हर चीज़ को हमें देखना चाहिए। हमें किसी भी वस्तु को, हरि संबंधी वस्तु ना मुमुक्षु भी परित्याग, कि जो समझदार लोग हैं वो हर चीज़ को भगवान, इसी को योगा कहते हैं। योगा का मतलब बहुत सिंपल है, हर चीज़ को भगवान से जोड़ दो, बच्चों को भगवान से जोड़ दो, पत्नी को भगवान से जोड़ दो, अपने आप को जोड़ दो, अपने समाज को, अपने देश को, अपने भाषा को, अपने कोई भी चीज़, अपने धन को, अपने परिवार को, अपनी नौकरी को, ग्रह डाको बने डाको सदा हरी बोले डाको। आप गृहस्थ आश्रम में हो, वानप्रस्थ आश्रम में हो, ब्रह्मचर्य में हो, नौकरी में हो, कहीं भी हो, एक ही गोल होना चाहिए कि इस अपने, जैसे एक बार अभी जब ये दर्शन बुक निकली थी जिसके अंदर सारे वर्ल्ड की जितनी भी डीटीज के फोटो वगैरह, उनकी कहानी कैसे मंदिर बना, तो जो नित्य तृप्ता माता जी हैं वो हमारे मंदिर में आई और उन्होंने फोटो वोटो खींची हमारे मंदिर की, 2-4 पूछी बातें, कैसे मंदिर खुला, क्या हुआ। तो हमने उनसे वैसे ही पूछ लिया कि माता जी आप जैसे पूछते हैं कि आपको कैसे कृष्णा कॉन्शियस वगैरह, तो बोली मैं तो डिग्री मेरी बीए की डिग्री मेरी फोटोग्राफी में है, और मैं जब प्रभुपाद जी से मिली तो ये बात आई। मैंने कहा प्रभुपाद जी मैं तो ये फोटोग्राफर हूँ और मेरे लिए क्या इस कौन में मैं क्या कर सकती हूँ। प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम हमारे मंदिरों में जो भगवान की मूर्तियां उनके फोटो लो। तो बोली मैं फोटोग्राफर थी, मुझे अजीब सा लगा क्योंकि मैंने कभी ऐसे फोटो ही ली नहीं थी, लेकिन बाद में पता चला एज ए फोटोग्राफर हम ये चाहते हैं कि जिसका हम फोटो ले वो हिले नहीं, हंसे तो स्माइल तो दे लेकिन हिले नहीं, क्योंकि फोटो अच्छी आएगी। और पता चला डीटी तो स्माइल करती है और हंसती है और हिलती नहीं, उनकी बेस्ट फोटो आती है। तो उन्हें लगा कि अगर मुझे किसी की फोटो खींचनी थी लाइफ में तो सिर्फ इनकी, क्योंकि ये परफेक्ट ऑब्जेक्ट है मेरे कैमरे के। तो तब से मुझे लगा कि बस, और मैंने पूरी जिंदगी डीटीज की फोटो मैं खींचती हूँ और या भक्तों के कुछ जो उनके होते हैं, तो ऐसे फोटोग्राफर हैं तो भी भक्ति में हैं। तो ऐसी ऐसी बातें सुन के बहुत अच्छा लगता है, अपनी भक्ति मजबूत होती है। हम यहाँ भक्तों को देखते हैं कैसे सेवा करते हैं, भक्त कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे अपनी अपनी सेवा में फिक्स है 40 साल से, ऐसे ऐसे भक्त यहाँ पे हैं। दर्शन है पवित्र करो ये तुम्हारे गुण, उनके दर्शन मात्र से आदमी पवित्र हो जाता है, भक्ति जग जाती है, आलस हट जाता है, उत्साह मन में आ जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।